प्रवचन पांच, एक तीर की उड़ान। सयादा ने कहा, आपने शील पाली में सील धारण कर लिया है, इसे धारण कर लिया है तो इसका अभ्यास कीजिए। जब आप नैतिकता की पारमी को पूरी तरह से परिपूर्ण करते हैं, केवल तभी आप बिना किसी अपवाद के जागृत संबंधित सभी विभिन्न आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यहाँ हम बता दें कि जागृत व्यक्तियों अर्थात अरहतों की तीन श्रेणियाँ होती हैं, शिक्षक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध पाली में पच्चेक बुद्ध तथा सामान्य अरहत, जिन्हें दो प्रमुख अथवा अग्रिम शिष्यों, 80 महान शिष्यों एवं असंख्य अरहतों में पुनर्विभाजित किया गया है। इन सभी व्यक्तियों ने चार आर्य सत्यों का पूर्ण रूपेण आत्मसात उपार्जित कर लिया होता है तथा इस प्रकार वे वास्तविकता के विषय में सभी तृष्णा, घृणा एवं भ्रम से मुक्त हो चुके हैं। शिक्षक बुद्ध तथा प्रत्येक बुद्ध स्वयं जागृत होते हैं, अर्थात वे बिना किसी की शिक्षा के ही निर्वाण प्राप्त करते हैं, जबकि सामान्य अरहत केवल किसी बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि एक प्रत्येक बुद्ध ने किसी बुद्ध की सहायता के बिना ही निर्वाण प्राप्त कर लिया होता है, परंतु उनमें दूसरों को निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रणी साधना की शिक्षा देने की क्षमता नहीं होती। प्रत्येक बुद्धत्व प्राप्ति के लिए अथवा बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सामान्य अरहत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक अवधि की तुलना में बुद्ध बनने के लिए किसी व्यक्ति को 10 पारमिताओं या पारमी में स्वयं को परिपूर्ण करने के लिए जितनी लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, वह असंख्य गुना अधिक है। परंतु कहा जाता है कि एक अरहत होने के लिए भी निर्वाण प्राप्ति की संभावना विकसित करने के लिए 100 से लेकर 1,00,000 कल्पों तक की आवश्यकता होती है। जब आदरणीय बेबू से आदा आकांक्षाओं की बात करते हैं, तो वे सदैव तथा केवल इन्हीं रूपों में से एक की प्राप्ति की आकांक्षा के लिए करते हैं। तो उन्होंने आगे कहा, अब जबकि आपने यह समझ लिया है कि आपने एक शुभ काल में तथा एक अच्छे अस्तित्व अर्थात लोक में जन्म लिया है, तो आप अपनी समूची शक्ति के साथ बुद्ध की शिक्षा का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए और उनमें स्वयं को स्थापित कर लीजिए। भगवान बुद्ध के आर्य शिष्यों ने कभी अवकाश लिए बिना या अपने प्रयास में ढीलापन लाए बिना अभ्यास किया तथा वे शरीर की सभी चारों अवस्थाओं में सतिमान अर्थात स्मृतिमान, सजग या जागरूक रहे। उन्होंने दृढ़ता के साथ काम किया तथा उन सभी लोगों ने अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया। आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस दृढ़ संकल्प के साथ यह साधना करें। बिना अवकाश के इस अविरल साधना की तुलना किससे की जा सकती है? यह एक तीर की उड़ान की तरह है। यदि हम धनुष से कोई तीर चलाते हैं, तो हम अपनी इच्छा अनुसार एक लक्ष्य लेते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए कि क्या वह तीर हमारे छोड़ने के बाद कभी कभी धीमा हो जाता है और फिर तेज जाने लगता है? क्या वह कभी कभी विश्राम करता है और तब पुनः लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं बनते, वह एक तीव्र एवं नियमित गति से उड़ता है। और वह रुकता कब है? वह तभी रुकता है जब वह लक्ष्य को भेद लेता है भंते। हाँ, वह तभी रुकता है जब वह अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को भेद लेता है। बिल्कुल उसी तरह बुद्ध के समय उनके शिष्यों ने अपने लक्ष्य के रूप में अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी विराम के, एक स्थिर गति से चलते हुए उन्होंने अंततो गत्वा वह जागृति, वह बोधि प्राप्त की जो उनकी हार्दिक इच्छा थी। निःसंदेह जागृति विभिन्न प्रकार की होती है। यदि आप अवकाश लिए बिना काम करते हैं तो उन सभी को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप सम्यक संबोधि, पाली में सम्मा संबोधि अर्थात बुद्धत्व के लिए काम करते हैं तो आपको निरंतर काम करना है। यदि आप प्रत्येक बोधि, पाली में प्रत्येक बोधि अर्थात अशिक्षक बुद्धत्व के लिए काम करते हैं तो भी आपको साधना में निरंतरता बनाए रखनी होगी। यदि आपका लक्ष्य श्रावक बोधि, पाली में श्रावक बोधि अर्थात अरहत्व है तो भी आपको स्थिरता पूर्वक अभ्यास करना होगा, जैसे कोई तीर स्थिर गति से उड़ान भरता है। यदि आप दृढ़ता के साथ अभ्यास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। यद्यपि आप बिना किसी विराम के अभ्यास करते हैं फिर भी आप शिथिल नहीं पड़ेंगे, थकेंगे नहीं। जैसे ही आप बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करेंगे आपको अतुल्य आनंद प्राप्त होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बुद्ध ने अनेक विभिन्न बातें सिखाई, आप सभी को धर्म ग्रंथों के कुछ कुछ भाग याद हैं जिन्हें भिक्षुओं ने अपनी महान करुणा से आपको सिखाया है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी विविध एवं व्यापक है, मैं इन सब को न तो समझ सकता हूँ और न इनका पालन कर सकता हूँ, अतः मैं अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। अथवा कुछ लोग सोचते होंगे कि जिसका जो सत्य है उसको वही जान सकता है, या अन्य लोग सोचते होंगे कि चूंकि मैं श्वास का अनुभव नहीं कर सकता इसलिए मैं अभी काम नहीं कर सकूंगा। अब बताइए कि आपका क्या बहाना है? शिष्य ने उत्तर दिया, हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जीविकोपार्जन करना होता है। यह सोचकर हम प्रातः से सायंग तक तथा सायंग से प्रातः तक ध्यान लगाना स्थगित कर देते हैं। इस तरह हम प्रयास करने को टालते रहते हैं। तो लोगों की और क्या कहने की प्रवृत्ति होती है? कुछ लोग कहते हैं कि वे वृद्धावस्था के कारण ध्यान नहीं लगा सकते, तथा कुछ लोग डरते हैं कि यह उन्हें रुग्ण बना देगा भंते। जो लोग अभी भी युवा हैं वे क्या कहते हैं? चूंकि उन्हें अध्ययन करना है इसलिए वे ध्यान नहीं लगा सकते। चूंकि अभी वे युवा एवं स्वस्थ हैं वे जीवन का आनंद लेना चाहते हैं भंते। तथा यदि आप अस्वस्थ एवं रुग्ण हो तब भंते हम चिंता करते हैं, हम डॉक्टर को बुलाते हैं और दवा के बारे में सोचते हैं, किंतु हम तब भी साधना नहीं करते। और जब आप स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं, हम येन केन प्रकारेण दिन प्रतिदिन ध्यान लगाना स्थगित करते रहते हैं और समय बीतने देते हैं, किंतु वास्तव में क्या आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं? हाँ भंते, यदि आप वास्तव में यह चाहते हैं तो इसके लिए प्रयास करना स्थगित क्यों करते हैं? वास्तव में मैं यह नहीं चाहता भंते। क्या यह केवल आप पर ही लागू होता है अथवा यहां आप सभी पर? इस दर्शक दीर्घा में कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जो वास्तव में आनंद प्राप्त करने के उत्सुक हैं, किंतु मेरे जैसे अन्य लोग इस विषय में अधिक गंभीर नहीं हैं। यदि आप प्रयास करते रहें, जैसा कि आप इस समय कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इसे प्राप्त करेंगे, किंतु विचार एवं संदेह मन में आ सकते हैं। क्या मुझे कष्ट भुगतना पड़ेगा? क्या यह साधना एक चुनौती बन जाएगी? आपने पहले से ही अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार बुद्ध की शिक्षा का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, किंतु ऐसी बातों के विषय में सोचने से आपकी प्रगति धीमी पड़ जाएगी। अतः अब शिक्षण को अच्छी तरह से सुनिए तथा उनका अभ्यास कीजिए। यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और इसकी वास्तविकता आपकी कल्पना के अनुरूप हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। जब आप स्वयं जानेंगे तब आपको यह भी पता चलेगा कि लक्ष्य के विषय में आपके विचार एवं अटकलें सही थे या नहीं। आप सब धम्म प्रवचनों द्वारा जानते हैं कि यदि आप बुद्ध की शिक्षा का पालन करते हैं तो आप वर्तमान एवं भविष्य में परमानंद प्राप्त करेंगे। यहाँ हम बता दें कि धर्म, पाली में धम्म, अर्थात बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सार्वभौमिक नियम पर गृहस्थ शिष्यों को उनके अनुरोध पर भिक्षुओं द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं। उनके लिए भोजन प्रस्तुत होने के पश्चात सामान्यतया भिक्षु धम्म पर कोई व्याख्यान देते हैं, परंतु बड़े बड़े समारोहों के लिए भी प्रसिद्ध भिक्षुओं द्वारा धम्म व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। तो सैयदा आगे बोले, वस्तुतः आप सभी स्वयं धम्मोपदेशक हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सोचना और अनुमान लगाना आपकी प्रगति को मंद कर देगा? यदि आप सोचते हैं तथा विश्लेषण करते हैं तो क्या प्रत्येक विचार सही होगा? नहीं बनते। यदि आप अपना लक्ष्य वैसा ही निर्धारित करें जैसा कि मैंने बताया है तथा उसे प्राप्त करने की अपनी इच्छा के विषय में सोचते ही रहें तो क्या यह लाभदायक होगा? नहीं बनते। तो क्या आप सोचना और मनन करना जारी रखेंगे? यदि हम सदैव सोचते रहें और विश्लेषण करते रहें तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। बनते, एक बार जब हम सोचना प्रारंभ करते हैं तो अनेक विचार आते हैं। जो कुछ भी हम सोचते हैं, क्या उसमें से अधिकांश हमारे काम का होगा? उपयोगी विचारों को सोचना कठिन होता है। विचार प्रायः व्यर्थ एवं भ्रामक हो जाते हैं। बनते, आर्य भिक्षु संघ ने शिक्षा की विस्तार से व्याख्या की है जो आपके लिए सत्य एवं वास्तविक हैं। फिर भी आपके विचार करने की प्रवृत्ति आपको पथभ्रष्ट करने के लिए उद्यत है। यह कैसे संभव है? किंतु मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? आप चिमेदाई से हैं। आपके घर में एक उद्यान तथा चारों ओर एक चहार दीवारी होगी। हाँ बनते, यह सही है। प्रवेश द्वार परिसर के किस ओर है? मेरा एक द्वार दक्षिण की ओर तथा एक उत्तर की ओर खुलता है। बनते, आपका भवन कितनी मंजिलों का है? वह एक मंजिला भवन है। बनते, आपका द्वार किस ओर है? दो द्वार हैं, एक पश्चिमी दीवार में तथा एक दक्षिण की दीवार में। बनते, तो अब हम यह जानते हैं कि आप चिमेदाई में रहते हैं, कि आपके उद्यान के चारों ओर एक चहार दीवारी है जिसमें उत्तर और दक्षिण में प्रवेश द्वार हैं। आपका घर एक मंजिला भवन है और उसमें दो दरवाजे हैं जो क्रमशः पश्चिम तथा दक्षिण की ओर हैं। देखिए, मैं आपके स्थान के विषय में सब कुछ जानता हूँ क्योंकि आपने मुझे बताया है। तो आपके घर के बारे में मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान लगभग एक ही है ना? एक सा नहीं हो सकता। बनते, परंतु क्यों? आप अपना गांव, अपना उद्यान तथा अपना मकान जानते हैं, आपने मुझे बताया कि आप जिम्मेदारी में रहते हैं तथा आप जैसा जानते हैं वैसा ही आपने मुझसे अपने बगीचे एवं अपने घर के बारे में बताया है। अतः मैं आपके गांव, आपके बगीचे और आपके घर को जानता हूँ। उसकी वास्तविकता को जैसा कि आप जानते हैं वैसा ही मैं जानता हूँ। जिस प्रकार मैं उसे जानता हूँ उसे आप वैसे नहीं जानते भंते। मेरे प्रिय मित्र, जो कुछ मुझे पता है और जो आप जानते हैं उनमें भिन्नता क्यों होनी चाहिए? जरा मुझसे पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं तो मैं उत्तर दूंगा कि आप जिम्मेदारी में रहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपकी बागवानी एवं आपके मकान के विषय में जानता हूँ जैसा कि आप जानते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप मुझे बता सकते हैं जो मैं पहले से नहीं जानता? मकान की संख्या तथा गली जिसमें वह है यदि मैं आपको भले ही बता दूं तब भी भंते आप मकान को ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। तो मुझे बताइए कि इस विषय में आप मुझसे अधिक और क्या जानते हैं? भंते, मैं इसके बारे में आपको और अधिक नहीं बता सकता, किंतु चूंकि मैं वास्तव में वहां हो चुका हूं मैं अधिक जानता हूं। ऐसी बात है तो मैं इसके बारे में सोच सोच कर पता लगाऊंगा कि जिम्मेदारी कहाँ है। भंते, आप इसके बारे में सोच कर नहीं पता लगा सकते। मैं बहुत सोचूंगा और लंबे समय तक सोचूंगा। इसमें से कुछ का सही होना तो स्वाभाविक है। मैं जिम्मेदारी में एक ऐसे मकान के विषय में सोचूंगा जो एक मंजिला हो, जिसमें दो प्रवेश द्वार व दो द्वार हों। क्या आपके घर के विषय में मेरे कुछ तो निष्कर्ष सही होंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता भंते। तो यह इतना कठिन है? खैर, मैं कई अलग अलग तरीके से सोचूंगा, इनमें से कोई न कोई तो सही निकलेगा। मैं इस समस्या पर एक वर्ष तक मनन करूंगा, तो क्या तब मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा? भंते, यदि आप इसके बारे में केवल सोचेंगे तो वह नहीं मिलेगा, किंतु यदि आप कृपा कर वहां आए और देखें तो वास्तव में आपको स्वयं पता चल जाएगा। अच्छा, यदि मैं इसके बारे में 40 या 50 वर्षों तक वास्तव में गहराई से सोचूं तो क्या होगा? अथवा और अच्छा हो कि मैं केवल सोचूं ही नहीं अपितु इसके बारे में बात भी करूं, तब क्या मैं उसे जान जाऊंगा? भंते, भले ही आप उसके बारे में सोचें और बात करें तब भी आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कृपया मुझे बताइए कि जिम्मेदारी कहाँ है? यहां से आपको दक्षिण पश्चिम की ओर चलना होगा भंते। तो यदि मैं दक्षिण पश्चिम दिशा में चलूं तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ भंते, आप पहुंच जाएंगे, किंतु फिर भी आपको मेरा घर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अब प्रारंभ करूंगा। मैं अत्यंत गहराई से सोचूंगा तथा साथ ही साथ मैं आपके निर्देशों एवं विवरण का पाठ करता रहूंगा, जाप करता रहूंगा। इस प्रकार मुझे पता चल जाएगा। नहीं बनते, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप कहते हैं कि अपने घर के विषय में सब कुछ जानते हैं, किंतु आपसे मैंने जो जाना है यदि मैं उसे दोहराता हूं तब आप कहते हैं कि मैं बकवास कर रहा हूं। मैं यह सहन नहीं कर सकता। भंते, आपने जो सुना है आप उसे केवल दोहराते हैं, किंतु वास्तव में आप नहीं जानते। तो जो कुछ भी मैं इस घर के बारे में बोलता हूं वह सही है, किंतु इनका कहना है कि मुझे अभी भी उस तरह से नहीं पता है जैसा कि इन्हें है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, किंतु अब यदि मैं इसके बारे में गहराई से सोचूं तथा अपने विचारों का पाठ करूं तो क्या तब भी हमारी समझ में अंतर होगा? या आपने जो कुछ कहा यदि मैं उसका रात दिन पाठ करूं तो क्या फिर भी मेरे लिए सचमुच में जान पाना संभव नहीं होगा? भंते, आपको तब भी वैसा नहीं पता चलेगा जैसा कि यदि आप स्वयं वहां गए होते तो पता चलता। आपने अपने घर के बारे में मुझे जो भी बताया उसके पहले मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु अब मैं कुछ न कुछ जानता हूँ। हाँ मनते, यह सच है, किंतु यदि आप उसे आकर देखें तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे बताइए कि यदि मैं आपके निर्देशों के अनुसार चलूं तो क्या मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा? हाँ मनते, और यदि मुझे मकान की संख्या न पता हो तो? तो आप लक्ष्यहीन भटकेंगे मनते, और यदि आपको वहां जाना हो तो? मैं तो सीधे अपने मकान की ओर जाऊंगा मनते। क्या आप चिंतित होंगे कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे और कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं? यदि आप मेरे साथ आएं तो आप नहीं खो सकते भंते, क्योंकि भंते मैं वहां पहले भी गया हूं। इस पर सयादा ने समझाया, बुद्ध ने जो स्वयं अनुभव किया था उसकी शिक्षा दी, अब आप सभी में अच्छी सलाह स्वीकारने के सामर्थ्य की गुणवत्ता है। बुद्ध की शिक्षा व्यापक है, सुत्तांत है, विनय है और अभिधम्म है। आपको इन सब के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के लिए एक कर्मस्थान अर्थात विषय वस्तु चुन लीजिए, एक ऐसी तकनीक जो आपके लिए उपयुक्त हो, तथा तत्पश्चात दृढ़ संकल्प के साथ साधना कीजिए। जब आप इस प्रकार स्वयं को स्थापित कर लेते हैं तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब आप सब पूरी गहराई से समझ सकेंगे। किंतु अभी ही मेरा बोलना समाप्त होने के पहले ही आप कुछ समझ गए हैं, और इसे तात्कालिक समझ या अकालिको कहते हैं। यहां हम बता दें कि बुद्ध धम्म के 6 गुणों में से एक अकालिको है। इसका शाब्दिक अर्थ बिना किसी कालांतर के अथवा तत्काल होता है। जो बुद्ध की शिक्षा को व्यवहार में लाता है उसे तत्काल परिणाम प्राप्त होता है। तो उन्होंने आगे कहा, हमारे शिक्षक एवं माता पिता अपनी महान करुणा के कारण हमें निर्देश देते हैं कि यह और वह सीखो, तथा जब हम रात में सोने जाते हैं तो वे हमें बुलाते हैं और पूछते हैं, तुमने सोने जाने से पहले बुद्ध को नमन क्यों नहीं किया? आओ नमन करो। यदि हम उनके निर्देशों का पालन नहीं करते तो उन्हें हमें प्रताड़ित भी करना पड़ता है। यद्यपि वे नहीं करना चाहते, फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है। उनकी सहायता के माध्यम से हम अपने इन प्रतिरोधों को दूर करते हैं, किंतु निसंदेह जब हमारी इसमें स्वयं रुचि होती है तभी हमें बुद्ध धम्म का तत्काल ज्ञान मिलता है। तो यह वास्तव में कब अकालिको तात्कालिक हो जाता है? भंते, केवल तभी जब हम धम्म को पा लेते हैं। और हम वास्तव में धम्म को कब पाएंगे? उसके लिए काम करने के पश्चात भंते। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें किस विशेष समय पर अभ्यास करना है? दिन या रात में कितने बजे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। यदि हम अभ्यास करते हैं और तब लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमें तत्काल ज्ञान प्राप्त होगा भंते। यह बहुत सरल है। आपने बुद्ध की शिक्षा प्राप्त की है, आपको बस इतना करना है कि आप उसी प्रकार से प्रयास करें जैसे कि बुद्ध के शिष्यों ने किया था। यह सरल है। यह मेरा स्वयं का ज्ञान नहीं है, मैंने भी बुद्ध की शिक्षा को सीखा है और मैं उन्हें आपको पारित कर रहा हूं। आप सब अत्यंत बुद्धिमान और उज्ज्वल हैं। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वह आप पहले से ही जानते हैं। बुद्ध ने धम्म की शिक्षा क्यों दी, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने लोगों को मन एवं पदार्थ के प्रति निरंतर अवगत जागरूक रहना सिखाया भंते। उन्होंने सिखाया जिससे कि वे लोग जो लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं ऐसा करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने सिखाया क्योंकि वे चाहते थे कि लोग मार्ग पर चलने में सक्षम हों। किंतु आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि अभ्यास के लिए यह अच्छा समय नहीं है। लोगों की इस आवाजाही के बीच मन में स्थिरता नहीं है। हो सकता है कि आपने निर्णय लिया हो कि जब मन शांत होगा तब हम ध्यान लगाएंगे। यदि थोड़ी देर के बाद मन शांत हो जाए तब क्या होगा? जब मन शांत हो जाए तो हम सोने चले जाएंगे बंते। ओह, सचमुच में? और इसे आप ध्यान लगाना कहते हैं? बंते, हम लोग ध्यान के बारे में केवल बात करने में ही पारंगत हैं। और फिर जब आपको अभ्यास न करने के कारण अंतर्मन में बुरा लगता है और आप किसी साधना केंद्र में जाने का निर्णय लेते हैं तो आप क्या लेकर जाते हैं? भंते, हम अपने साथ भोजन ले जाते हैं। मुझे बताइए कि शिक्षा पदों को ग्रहण करने के पश्चात क्या आप खूब खाते हैं? जी हाँ भंते, महिलाएं भोजन परोसती हैं और हम बस खाते हैं। हम शीघ्र ही प्रारंभ करते हैं और फिर हम दोपहर 12 बजे तक खाते रहते हैं। यहाँ हम बता दें कि छठे शिक्षा पद के अनुसार दोपहर 12 बजे के बाद ठोस आहार का सेवन वर्जित है। तो श्रेयादा ने आगे पूछा, क्या आप सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक खाते हैं? ओह हाँ भंते, बहुत अधिक। तो मुझे बताइए, क्या आप दोपहर को खाना बंद कर देते हैं? भंते, देखिए ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद भी खाते रहना ठीक ही है। एक बार बंद कर देने पर फिर व्यक्ति दोपहर 12 बजे के बाद पुनः प्रारंभ नहीं कर सकता। किंतु यदि मैंने दोपहर से पहले ही प्रारंभ किया है तो मैं दोपहर के बाद भी खाना जारी रख सकता हूँ, ऐसा मैंने सुना है। आपका क्या? क्या आप खाना जारी रखते हैं? जब हम लोग इस प्रकार वार्तालाप कर रहे होते हैं तब भी मैं खाना जारी रखता हूँ बनते। और भोजन समाप्त करने के पश्चात आप क्या करते हैं? तब मेरा पेट भरा होता है बनते, इसलिए मैं सीधे यानी पीठ के बल लेट जाता हूँ और तब मैं सोता हूँ बनते। और फिर आप उठते कब हैं? अपराह्न लगभग 3 या 4 बजे बनते। तब पूरी तरह से जागरूक एवं सतर्क होकर क्या आप ध्यान लगाते हैं? नहीं बनते। तब मैं कुछ फल के रस एवं लेमनेड या नींबू पानी के लिए पूछता हूँ। यहाँ हम बता दें कि दूध को ठोस आहार माना जाता है। तब सजादा ने आगे पूछा, क्या आप मात्र अल्प मात्रा में अथवा अत्यधिक पान करते हैं? मैं भरपूर पीता हूँ भंते। भले ही आप बहुत पान करें फिर भी कुछ तो बच जाता होगा, क्या आप उसे दूसरों में बांटते हैं? नहीं भंते, मैं स्वयं सब पी जाता हूँ क्योंकि मैं उसे अपने पास ही रखना पसंद करता हूँ। यदि आप बहुत अधिक पी लेते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं बनते, बहुत अच्छा नहीं। तो मुझे बताइए, तत्पश्चात क्या आप ध्यान लगाते हैं? ऐसा है कि बनते, चूंकि मैं बहुत अच्छा नहीं महसूस करता, मुझे लेटना पड़ता है और तब क्या होता है? मैं पुनः सो जाता हूँ बनते। और आप उठते कब हैं? अगले दिन भंते, जब सूर्योदय होता है मैं स्वयं से कहता हूँ, ऐसा है कि देखो सूर्योदय हो गया, तथा मैं उठता हूँ और जलपान करता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, यदि आपको निर्वाण न प्राप्त हो तो क्या आपको लगता है कि ऐसा इसलिए है कि कोई सम्यक संबुद्ध नहीं हुए हैं तथा निर्वाण का कोई अस्तित्व नहीं है? नहीं बनते, ऐसा इसलिए है कि मैं खाता बहुत अधिक हूँ। अच्छा, आप कुछ तो प्रयास करते हैं किंतु मेरे विचार से यह लोभ थोड़ा प्रबल है। मुझे बताइए, जब आप ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं और कोई आपके कान के पास फुसफुसाता है तो आप उसे सुनते हैं या नहीं? यदि एकाग्रता उतनी अच्छी नहीं है तो हम अपने कान खोलते हैं और सुनते हैं कि क्या फुसफुसाया जा रहा है। बंते, जब आप यह फुसफुसाहट सुनते हैं तो क्या आप उसे स्वीकार करते हैं, और जो लोग फुसफुसा रहे हैं क्या उनका सम्मान करते हैं? भंते, जब ध्यान लगाने का संकल्प दृढ़ होता है तो जो फुसफुसा रहे हैं मैं उन लोगों पर अवश्य क्रोधित हो जाता हूँ। साधकों को क्रोध आता है? यदि लोग उस स्थान पर आते हैं जहाँ मैं ध्यान लगा रहा हूँ और कानाफूसी करते हैं तो मैं निश्चित रूप से क्रोधित हो जाऊंगा। भंते, ऐसा सोचना कि क्या इन्हें यहीं कानाफूसी करनी है, वैसे यह व्यक्ति कहाँ से है, यह कौन है, और क्रोधित होना क्या कुशल बात है? ऐसा साधक जो इस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, क्या वह अपना लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करेगा? यदि वह क्रोधित होता है और फिर मरता है तो वह कहाँ पुनर्जन्म लेगा? वह अपाय लोकों अर्थात अधोलोकों में पुनर्जन्म लेगा। बनते, यहाँ तक कि यदि वह 8 उपोषित शिक्षा पदों का पालन कर रहा हो तो क्या फिर भी यदि वह क्रोध करता है तो वह अपाय लोकों में जाएगा। भंते, ध्यान लगाते समय फुसफुसाहट द्वारा विघ्न पड़ने की समस्या को हमें किस दृष्टिकोण से लेना चाहिए? हमें इस प्रकार से विचार करना चाहिए, मैं यहाँ ध्यान लगाने आया हूँ, मेरे यह साधक फुसफुसा रहे हैं और मुझे वे सुनाई पड़ते हैं। यदि दूसरों को पता लगे कि मैं फुसफुसाहट पर ध्यान देता हूँ तो मैं लज्जित अनुभव करूँगा, क्योंकि तब सबको पता चल जाएगा कि मैं पर्याप्त प्रयास नहीं करता, अतः मैं और अधिक प्रयास करूँगा। हमें उन लोगों का आभारी होना चाहिए जो हमें अपनी फुसफुसाहट से यह दिखाते हैं कि हमारा प्रयास पर्याप्त नहीं है। यदि आपका प्रयास अच्छा है तो आपकी एकाग्रता अच्छी होगी तथा आपको वह सब कुछ भी नहीं सुनाई देगा। आपको आभारी होते हुए यह आशा करनी चाहिए कि वे लोग बात करते रहें तथा आपको ध्यान लगाते रहना चाहिए। उनके पास जाने की तथा वास्तव में उन्हें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान लगाते रहिए तथा जैसे ही आपकी ध्यान के विषय वस्तु की जागरूकता निरंतर हो जाती है तो आपको कोई विघ्न नहीं सुनाई देगा। यदि वे बहुत जोर जोर से बातें करें तो क्या आप सुनेंगे? बनते, यदि वे जोर जोर से बात करें तो मुझे लगता है कि वे मुझे सुनाई देंगे। यह सोच कर कि वे मुझसे मेरे प्रयास में सुधार लाने के लिए कह रहे हैं, उन लोगों के प्रति आभारी होते हुए मैं अपने मन को स्थिर करता हूँ तथा कर्मस्थान पर पुनः ध्यान केंद्रित करता हूँ। यह सोचकर हमें पुनः आभारी होना है। ध्यान लगाने की साधना का अर्थ है कि विषय वस्तु को इतनी घनिष्ठता से जानते रहना कि वह हमारे ध्यान से कभी भी बाहर न जाने पाए। बनते, कृपया हमें यह समझाइए कि विषय वस्तु को इतनी बारीकी से कैसे जानते रहें? आपको अपना ध्यान पूरी तरह से केवल कर्मस्थान पर एकत्रित या केंद्रित करना है। आप सभी जन्म के क्षण से ही सदैव श्वास ले रहे हैं। श्वास लेते तथा छोड़ते समय जहाँ वायु स्पर्श करती है, क्या आप उसका अनुभव कर सकते हैं? भंते, स्पर्श की संवेदना मुझे दाहिने नासिका रंध्र के नीचे सबसे अधिक स्पष्ट होती है। दो स्थानों पर नहीं? नहीं भंते, केवल एक ही स्थान पर। हाँ, जब आप श्वास अंदर लेते हैं और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वह इस छोटे से स्थान को स्पर्श करती है। मुझे बताइए, क्या वह अंतराल दे देकर आती है या उसका प्रवाह सतत रहता है? अंतराल होते हैं भंते। क्या यह वायु का प्रवाह है जो बाधित होता है अथवा उसकी जागरूकता? आपके आश्वास एवं प्रश्वास के समय क्या वायु का स्पर्श निरंतर रहता है? वह निर्बाध होता है भंते। तब आपको वायु के इस प्रवाह को अविरल जानते रहना है, अन्यत्र मत देखिए, केवल श्वास के इस स्पर्श को जानते रहिए। यदि आप इसे अनुभव नहीं कर पाते तो आप अपनी उंगली से संपर्क के स्थान को स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। जब आप स्पर्श की अनुभूति जान जाएं, तब अपनी उंगली हटा लें तथा उस स्थान पर स्पर्श की संवेदना की जागरूकता के साथ बने रहें। वायु का स्पर्श जो निरंतर है, उसे आपको निरंतर जानते रहना है। जागरूकता की निरंतरता में अंतराल के बिना यदि आप इस स्थान को जानते रहें तो क्या आप फिर भी फुसफुसाहट सुनेंगे? नहीं बनते, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस स्थान पर यदि दृढ़ता एवं स्थिरता पूर्वक ध्यान ठहर जाए तो क्या आप जोर जोर की आवाज सुनेंगे? नहीं बनते। आप नाक के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर एकमात्र इस स्थान का ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती। यह स्थान क्या पदार्थ है या मन? यह पदार्थ है भंते, और वह तत्व जो इसे जानता है, इसका बोध करता है, वह क्या है? वह मन है भंते। अतः यदि आप कर्मस्थान का अविरल बोध करते हैं तो आप मन एवं पदार्थ के प्रति निरंतर जागरूक रहते हैं या नहीं? हाँ भंते, यह सत्य है। यदि आप इस प्रकार मन एवं पदार्थ से अवगत होते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ कोई आत्मा नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई मनुष्य या देवता या ब्रह्मा नहीं है। यही है जो बुद्ध ने सिखाया है। यदि हम मन एवं पदार्थ से अवगत होते हैं तो क्या हम फिर भी मनुष्य, देवता तथा ब्रह्मा के रूप में सोचते हैं? नहीं मानते, हम नहीं सोचते। क्या इस प्रकार से अवगत रहना सरल है? हाँ मानते, यह सरल है। जो बातें जैसी हैं, यह उनको वैसे ही जानना है। मन एवं पदार्थ अविरल उत्पन्न होते हैं, वे उत्पन्न होते हैं और तब विघटित हो जाते हैं। बिजली की एक कड़क के क्षण में वे कितनी बार विघटित हो जाते हैं? मैंने सुना है कि आँख की पलक की एक झपक में वे 100 अरब बार विघटित होते हैं भंते। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आँख की पलक की एक झपक में आप कैसे 100 अरब तक गिन सकते हैं? मैं नहीं गिन सकता भंते। मान लीजिए कि आपको 100 अरब स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, जिन्हें गिनना हो, तो आपको कितना समय लगेगा? मैं समझता हूँ कि 1 महीना लगेगा भंते। यहाँ तक कि यदि मैं प्रलोभन में रात दिन गिनूं, तब भी उतना समय तो लग जाएगा। अतुल्य बुद्ध ने अपने स्वयं के उच्च ज्ञान से इसे गहराई से समझा तथा तब वे इसकी शिक्षा देने में सक्षम हुए। किंतु हम स्वयं क्या जान सकते हैं? हम मन एवं पदार्थ को एक साथ जान सकते हैं, और हमें इस जागरूकता से क्या मिलेगा? हम उनके व्यवहार की विशिष्टता को समझने में सक्षम होंगे। आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप इस समय अभ्यास कर रहे हैं, केवल वैसे ही अभ्यास करते रहिए। अपना ध्यान कर्मस्थान पर ही केंद्रित रखिए तथा जब आप ध्यान को श्वास एवं स्थान की जागरूकता पर बनाए रखने में क्षमता प्राप्त करते हैं तो मन एवं पदार्थ आपसे बात करेंगे। तो शिष्य ने पूछा, जब एक आश्वास समाप्त होती है तो क्या हमें अनित्य, पाली में अनिच्य अर्थात नश्वरता के विषय में सोचना चाहिए? भंते, जैसे ही एक श्वास समापक को जाती है, यदि आप अनिच्य के विषय में सोचते हैं तो यह अच्छी बात है। यदि आप इस प्रकार अनिच्य को जानते रहें तो क्या आप निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम होंगे? अभी तक तो नहीं भंते। अतः यदि आप अभी तक निर्वाण नहीं प्राप्त कर सके तो कर्म स्थान पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखिए तथा आप जान जाएंगे। भंते, हमें कैसे अनिच्य जानना है? आप कहते हैं कि चीनी मीठी होती है, है ना? किंतु यदि मैंने पहले कभी चीनी का स्वाद न चखा हो तो आप मुझे मिठास के बारे में कैसे समझाएंगे? यहां तक कि यह ताड़ की शक्कर से भी अधिक अच्छी होती है भंते, किंतु हम इसे वैसे नहीं समझा सकते जिससे कि आप वास्तव में समझ जाएं। किंतु आपने इसे चखा है तो आप इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बता सकते? ऐसा है कि भंते, चीनी नमक की तरह दिखती है, किंतु यद्यपि उन्हें चीनी अच्छी लगती है, चींटियां नमक की ओर नहीं जाती। किंतु इससे आपको बहुत अधिक सहायता नहीं मिलेगी भंते। भंते, आपको उसका स्वाद चखना होगा। तो नमक और चीनी एक जैसे दिखते हैं। अब यदि मैं कुछ नमक उसको चीनी का कर खाऊं तो क्या मुझे चीनी का स्वाद मिलेगा? नहीं भंते, नमक तो नमकीन रहेगा। उस स्थिति में मैं सोचूंगा कि चीनी नमकीन है। भंते, यह तो वैसे ही है जैसे हमें नश्वरता पहचानने की जानकारी ना हो। जब हम चीनी के बाहरी स्वरूप के विषय में बात करते हैं तब वहां चीनी को कुछ और समझने की संभावनाएं अनेक हो जाती हैं। यदि आप चीनी के केवल स्वाद को ठीक से समझाएं तो मैं समझ सकता हूं। हम आपको कुछ चीनी खाने का परामर्श देना चाहेंगे भंते। जब मैं इसे खा रहा होता हूं तो क्या आपको मेरे बगल में बैठना होगा और कहते रहना होगा, यह मधुर है, यह मधुर है? यदि मैं ऐसा जाप करूं तो वह आपके लिए केवल कष्टप्रद होगा भंते, तथा चीनी को मीठा होने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप अपने मुंह में चीनी डालेंगे वैसे ही आप उसकी मिठास का स्वाद लेने में सक्षम हो जाएंगे। किंतु मान लीजिए कि एक अरण्यवासी भिक्षु हैं जो चीनी का स्वाद लेना चाहते हैं। क्या चीनी सोचेगी, यह तो एक जंगल का भिक्षु है, मैं इसके लिए पूरी तरह से मीठी नहीं होऊंगी, मैं शहरी लोगों के लिए जितनी मीठी होती हूं इसके लिए केवल उसकी आधी मीठी होऊंगी? चीनी पक्षपात नहीं करती भंते, वह एक के लिए उतनी ही मधुर होती है जितनी किसी अन्य के लिए। मन एवं पदार्थ की जागरूकता के साथ भी ठीक वैसा ही है। यदि आप यह जागरूकता बनाए रखें तो आप धम्म का स्वाद तत्काल चखेंगे, जैसे कि आप चीनी खाते ही उसकी मिठास का स्वाद चखते हैं। क्या यह तब भी संभव है कि आप नमक को चीनी समझने की त्रुटि करें? आप तो बहुधा बाजार जाते हैं और आप सरलता से नमक और चीनी के बीच भेद कर सकते हैं। आप चीनी के स्थान पर नमक नहीं खरीदने जा रहे हैं। अतुल्य बुद्ध ने सत्य को बेधा तथा उसे वास्तव में जाना। मुक्ति क्या है तथा दुख क्या है, इन दोनों के बीच वे भेद कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने मनुष्यों, देवताओं एवं ब्रह्माओं को समान रूप से यह मुक्ति दी। उन्होंने उनसे केवल खाने के लिए कहा, बस खाइए, यह वास्तविक है। इस भय से कि यह संभवतः वास्तविक मुक्ति न सिद्ध हो, क्या आप यहां खाए बिना रह सकते हैं? हम उस बिंदु तक अभी नहीं पहुंचे हैं भंते, हम बस आपके शब्दों को सुन रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, खाइए, आप गलत नहीं जाएंगे। और क्यों आप गलत नहीं जा सकते? क्योंकि मन एवं पदार्थ वास्तव में निरंतर उत्पन्न एवं विघटित हो रहे हैं। यद्यपि आप अभी तक मुक्ति को नहीं जानते, फिर भी आप कर्मस्थान पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित करें? यदि आप कुछ न खाएं, तो क्या कभी आपको पता चल पाएगा कि उसका स्वाद कैसा है? आप धम्म के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। आप नाम एवं रूप अर्थात मन एवं पदार्थ के विषय में जानते हैं। आप जानते हैं कि सूत्र में, पाली में, सूत्र में क्या है, और आपको विनय एवं अभिधम्म के विषय में पता है। आप जानते हैं कि यह समथ, पाली में समथ है, और यह विपस्सना, पाली में विपस्सना है। किंतु भंते, यह सब हमारे मस्तिष्क में एक दीर्घकाय खिचड़ी की तरह मिश्रित हो गया है। इसे मिश्रित होने दीजिए। आप केवल इस कर्मस्थान पर ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। बाद में यह मिश्रण सुलझ जाएगा, सब कुछ अपने अपने स्थान पर आ जाएगा। यदि हम पूर्व दिशा में जाते हैं, तो हम पूर्व में किसी स्थान पर पहुँचेंगे। यदि हम पश्चिम जाते हैं, तो हम पश्चिम में किसी स्थान पर पहुँच जाएंगे। यह छोटा सा स्थान एक वाहन के समान है। यदि आप मांडले जाना चाहते हैं, तो आपको मांडले की रेलगाड़ी में सवार होना पड़ेगा तथा उसमें बैठे रहना होगा। यह छोटा सा स्थान उस रेलगाड़ी की तरह है। इसको छोड़िए मत, उस पर अपना ध्यान बड़ी बारीकी से केंद्रित किए रखिए। मुझे बस इतना ही कहना है, इसके अतिरिक्त कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्या आप अष्टांगिक आर्य मार्ग के 8 अंगों को जानते हैं? आपके विचार से कर्मस्थान पर ध्यान केंद्रित करने की इस साधना में वे कैसे प्रयुक्त होते हैं? यदि कोई व्यक्ति समुचित एकाग्रता के साथ कर्मस्थान पर ध्यान केंद्रित करता है, तब वह समुचित दृश्य का ज्ञान प्राप्त करता है। भंते, क्या अष्टांगिक आर्य मार्ग के अन्य अंग इस अभ्यास के लिए प्रासंगिक हैं? भंते, अष्टांगिक आर्य मार्ग के 8 अंग इस प्रकार हैं: समुचित दृष्टि, समुचित संकल्प, समुचित वाणी, समुचित कार्य, समुचित आजीविका, समुचित प्रयास, समुचित सति, समुचित एकाग्रता। जब हमारा चित्त कर्म स्थान पर स्थिर होता है, तो हम वैसे ही अकुशल विचार नहीं सोचते, अतः वहाँ कुशल विचार या संकल्प होते हैं। भंते, चूंकि हम पूर्ण रूपेण मौन रहते हैं, हम मिथ्या नहीं बोलते, तथा इसलिए वाणी समुचित होती है। चूंकि श्वास की जागरूकता एक कुशल कार्य है, इस साधना में समुचित कार्य सम्मिलित है। यहाँ समुचित जीविका भी है, क्योंकि हम दूसरों के साथ कपट करके जीविकोपार्जन का प्रयास नहीं कर रहे हैं। भंते, हम कर्मस्थान पर ध्यान बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा रहे हैं, अतः यहाँ समुचित प्रयास है। चूंकि हम ध्यान को इधर उधर भटकने दिए बिना श्वास पर केंद्रित करते हैं, हम में समुचित सति है, तथा चूंकि ध्यान कर्मस्थान पर बिना इधर उधर भटके स्थिर हो जाता है, हम समुचित एकाग्रता प्राप्त करते हैं। भंते, तो क्या आपको लगता है कि यह एक नौका अथवा रेलगाड़ी की तरह है? हाँ भंते, यह एक नौका, ट्रेन, बैलगाड़ी या कार की तरह है, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है। इस वाहन का त्याग मत कीजिए। क्या आप समझ रहे हैं? आप अपना ध्यान यहाँ इस कर्मस्थान पर दृढ़ता से केंद्रित किए रखिए, तथा इस स्थान को कभी भी मत छोड़िए। इस तरह आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। कभी कभी आप मांडले की ट्रेन पर यात्रा करते हुए अधीर हो सकते हैं और सोचते हैं, मैं मांडले जाना चाहता हूँ, किंतु क्या यह ट्रेन वास्तव में वहाँ जा रही है अथवा रंगून जा रही है? यदि ऐसा होता है, तो क्या आप उतर जाएंगे? नहीं, अपनी यात्रा जारी रखिए और आप देखेंगे कि आप अंततः मांडले पहुंच जाएंगे। यदि आप तंग आ जाएं और ऊब जाएं तो भी ट्रेन मत छोड़िए। यदि आप आनंद ले रहे हैं तो भी नीचे मत उतरिए। जब आप रुग्ण हों तो ट्रेन में रहिए, और जब आप सबल एवं स्वस्थ हों तब भी उसमें रुके रहिए। जब आपके साथ अनेक लोग हों तब भी रहिए। जब आप मात्र अकेले हों तो भी मत छोड़िए। जब आपको लोग अप्रिय बातें कहते हैं तो भी उसमें बने रहिए, और जब वे आपसे सम्मानपूर्वक बात करते हैं तो भी अपनी ट्रेन से मत निकलिए। यदि लोग आपको पीटें क्योंकि वे आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे? भंते, मुझे लगता है कि मैं भाग जाऊंगा। बस इस स्थान पर अपना ध्यान बनाए रखिए। यहाँ तक कि यदि लुटेरे आपको मारते हैं तो भी वे इस जागरूकता पर प्रहार नहीं कर सकते। यह सत्य है भंते, किंतु मुझे लगता है कि यदि वे मुझ पर प्रहार करें तो यह जागरूकता चली जाएगी। यह आवश्यक नहीं है। हमारे बोधिसत्व, पाली में बोधिसत्व, अपने एक जन्म में बंदरों के राजा हुए। हम यहां बता दें कि बोधि प्राप्त करने की आकांक्षा वाले को, अर्थात भावी बुद्ध को, बोधिसत्व कहते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बुद्ध से प्रेरित होकर बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए काम करने का प्रण लेते हैं। तब से लेकर प्रत्येक जन्म में वे 10 पारमी या पारमिताओं, अर्थात नैतिक गुणों की परिपूर्णता के अभ्यास के माध्यम से सर्वोच्च श्रेणी की मानसिक ऊर्जा संरक्षित करते हैं। सयाजी उबाखी द्वारा 1954 में यंगॉन में प्रकाशित व्हाट बुद्धिज्म इज के पृष्ठ 6 पर इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह कथा महाकपि जातक, अर्थात जातक संख्या 516 में वर्णित है। तो सयादा ने बताया कि बोधिसत्व को एक व्यक्ति वन में एक खाई में नीचे असहाय तथा निश्चित रूप से मरणासन्न गिरा पड़ा मिला। वह अपने भाग्य को कोस रहा था और विलाप कर रहा था, आह मेरी दुर्दशा, आह मेरी दुर्दशा, मैं 100 गज गहरी एक खाई में गिर गया हूँ, मैं निश्चित रूप से यहाँ नीचे मर जाऊँगा, आह मेरी दुर्दशा, आह आह आह, मेरे मित्र व संबंधी, मेरी पत्नी एवं संतानें मेरे दुर्भाग्य के विषय में नहीं जानते, यहाँ मेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है, आह आह, और वह रो रहा था। ऐसा है कि आर्यजन बिना किसी अपवाद के सदैव सभी प्राणियों के कल्याण के विषय में सोचते हैं, तथा चूंकि वे बोधिसत्व एक ऐसे ही आर्य प्राणी होते हैं, वानर राज ने उसके प्रति वैसी ही करुणा अनुभव की जैसी कि वे अपने ही बालकों के प्रति अनुभव करते, और इसलिए वे कगार से नीचे उतरे तथा उसके समीप गए। आप भयभीत न हो, निराश न हो, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने उसे आश्वस्त करने के लिए तथा प्रसन्न करने के लिए उसे कहा, और उनका उद्देश्य भी यही था, किंतु अभी वे उसे अपने कंधों पर उठाकर ऊपर चट्टानों पर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें भय था कि वे गिर सकते हैं और वह आहत हो सकता है। उन्होंने उसके भार के लगभग समान भार का एक बड़ा शिलाखंड लेकर उसे अपने एक कंधे पर रखकर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदते हुए वे कगार के ऊपर ले जाने का प्रयास करने लगे। इस परीक्षा में सफल होने के पश्चात ही उन्होंने उस व्यक्ति को सावधानी से अपने कंधों पर रखा और एक शिला से दूसरी शिला पर कूदते हुए वे वापस ऊपर चढ़ गए। इस उत्कृष्ट प्रयास के पश्चात वानरराज थक गए। इस कुशल कार्य का निष्पादन करते हुए वे आनंदित हुए, किंतु इसे पूरा कर लेने पर वे और भी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने एक प्राण की रक्षा की थी। वे आश्वस्त थे कि जिसे उन्होंने निश्चित मृत्यु से बचाया था वह विश्वसनीय था, और उससे बोले, आपको ऊपर ले जाने के बाद मैं कुछ थक गया हूँ, कृपया आप थोड़ी देर के लिए पहरा दीजिए जिससे कि मैं विश्राम कर सकूँ। और यह सोचकर कि वन के सभी संकटों से वे भली भांति सुरक्षित हैं, उन्होंने उसकी गोद में अपना सिर रख दिया। किंतु जब वानर राज सो रहे थे तो उसने सोचा, मैं शीघ्र ही वापस घर जाऊंगा, परंतु मेरे पास अपनी पत्नी और बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस बड़े से बंदर को मारकर इसका मांस उन्हें उपहार स्वरूप देगा। तो उसने वह शिलाखंड उठाया जिसे बोधिसत्व अभ्यास के लिए ऊपर लाए थे, और बोधिसत्व के सिर पर एक घातक प्रहार कर दिया। यह उसने अपने उद्धारकर्ता के लिए खेद अनुभव करते हुए या किसी हिचकिचाहट के साथ नहीं किया, अपितु उसे पहले ही आघात में मार देने के लिए जोर से मारा। बोधिसत्व को आघात से जब पीड़ा अनुभव हुई तो वे तत्काल अगले वृक्ष पर चढ़ गए, और उन्होंने स्वयं से पूछा कि उन पर किस वस्तु ने या किसने आक्रमण किया था। तब उन्होंने देखा कि वहां आसपास कोई शत्रु नहीं था, किंतु स्वयं उस व्यक्ति ने ही उन्हें मारने का प्रयास किया था, तथा उन्होंने अपने मन में सोचा, हाँ, संसार में इस तरह के भी लोग होते हैं। जब बोधिसत्व ऐसा सोच रहे थे तो उसने पुनः विलाप करना प्रारंभ कर दिया कि वह इस विशाल वन में खो गया है तथा वह नष्ट ही हो जाएगा। किंतु वृक्ष के ऊपर से बोलते हुए वानरराज ने उससे कहा, चिंता मत कीजिए, भयभीत मत होइए, मैंने आपको आपके घर वापस ले जाने का वचन दिया है और मैं यह वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको आपके घर ले जाऊंगा। अब मैं आपको अपने कंधे पर रख कर तो नहीं ले जा सकता, किंतु चूंकि आपने मेरी खोपड़ी खोल दी है, धरती पर निरंतर रक्त टपक रहा है। मैं ऊपर वृक्षों में से आपके लिए रक्त द्वारा मार्ग इंगित करूंगा, बस उसका अनुसरण कीजिए। बोधिसत्व ने इस प्रकार से व्यवहार किया। यह सब उन्होंने अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि उनका लक्ष्य सर्वज्ञ बुद्धत्व था। उन्होंने सभी 10 पारमी के लिए परिश्रम किया। इस भय से कि वह व्यक्ति जिसने उनका प्राण लेने का प्रयास किया था पुनः हत्या का प्रयास कर सकता है, क्या बोधिसत्व ने कुशल कार्य करना त्याग दिया? क्या उन्होंने उसे वन में ही छोड़ दिया? नहीं भंते, अपनी पारमी को परिपूर्ण करने के लिए बोधिसत्व महान मेत्ता के साथ उसे उसके घर की ओर ले गए। तो आप देखिए कि यदि कोई सर्वज्ञ बुद्धत्व की आकांक्षा करता है तो उसे इस प्रकार 10 पारमी को बिना अवकाश लिए बिना विश्राम किए परिपूर्ण करना होता है, अन्यथा वह बुद्धत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। क्या आप समझ रहे हैं? वे कभी अवकाश नहीं लेते, वे कभी शिथिल नहीं होते, वे 10 पारमी पर सदैव काम करते हैं। अभी आपने मुझसे कहा कि यदि लुटेरे आप पर आक्रमण करते हैं तथा आपकी हत्या करने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी जागरूकता नहीं बनाए रख पाएंगे। भंते, अभी तक तो मैं नहीं बनाए रख सकता, किंतु आप जागृति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, है ना? हाँ भंते, मैं हूँ। यदि आप चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप अपना ध्यान वैसे ही केंद्रित करें जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। भले ही लोग आपको पीटें, आपको कूटें तथा आपको नष्ट करें। क्या आपने स्थविर पालिमेथेर तिस्स की कथा सुनी है? यहाँ हम बता दें कि यह कथा आचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित विशुद्धि मार्ग के डॉक्टर तपस्या उपाध्याय द्वारा अनुदित तथा बौद्ध भारती द्वारा वाराणसी से 1998 में प्रकाशित प्रथम भाग के पृष्ठ 68-69 पर पाई जा सकती है। तो शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं बनते, मैंने नहीं सुनी है। स्थविरतिस्स ने बुद्ध की शिक्षा प्राप्त की तथा उसके मूल्य को समझते हुए उन्होंने सोचा, अब मैं इस ऐश्वर्य में रहना जारी नहीं रख सकता, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई को दे दी। तब वे एक भिक्षु बन गए तथा अपने भिक्षा पात्र एवं 3 चिवर वस्त्रों के साथ रहने और ध्यान लगाने वन चले गए। तो उनके भाई की पत्नी ने सोचा, मेरे ज्येष्ठ अर्थात पति के बड़े भाई के सारे धन का आधिपत्य अत्यंत ही सुखद है। यदि वे एक भिक्षु बने रहते हैं तो हम अपने शेष जीवन पर्यंत इन संपत्तियों को रख पाएंगे, किंतु संभव है कि वे जागृति न प्राप्त करें और तब वे संभवतः गृहस्थ जीवन में लौट आएं। तो सबसे अच्छा होगा कि मैं उनकी हत्या करवा दूं। तथा उसने कुछ लुटेरों को धन दिया और उनसे कहा, जाओ और स्थविरतिस्स की हत्या कर दो। जब तुम अपना काम पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें और अधिक धन दूंगी। तो लुटेरे वन में गए जहां स्थविरतिस्स रहते थे तथा उन्हें पकड़ा। उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, किंतु यदि तुम लोग मेरा पात्र एवं चीवर लेना चाहते हो तो कृपया ले लो। लुटेरों ने उत्तर दिया, हम आपको केवल मारना चाहते हैं। आपके भाई की पत्नी ने हमें आपकी हत्या करने के लिए धन दिया है तथा हमारा काम पूरा होने के बाद वह हमें और भी अधिक देगी। इसी कारण से हमें आपको मारना है। स्थविरतिस्स ने विचार किया, मैं अभी तक दुख से मुक्त अर्थात अरहत नहीं हुआ है, तथा वे स्वयं के प्रति लज्जित अनुभव करने लगे। उन्होंने लुटेरों से कहा, ठीक है तुम लोगों को मुझे मारना है, किंतु कृपया मुझे भोर तक का समय दे दो और केवल उसके बाद ही मेरे जीवन को समाप्त करो। डाकुओं ने सोचा, मृत्यु से प्रत्येक व्यक्ति भयभीत होता है, यदि ये भिक्षु पलायन करते हैं तो हमें हमारा धन नहीं मिल पाएगा। तो थेरतिस ने पूछा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। और उन्होंने एक शिलाखंड लिया तथा अपने दोनों पैरों को चूर चूर कर दिया। और तब उन्होंने कहा, अब मैं बिल्कुल नहीं भाग सकता, अतः कृपया भोर तक मेरी हत्या मत करो। यद्यपि लुटेरे अत्यंत कठोर लोग थे, परंतु थेरतिस्स की मेत्ता के कारण उन्होंने करुणा अनुभव की तथा उन्हें भोर तक जीवित रहने देने का निर्णय लिया। थेरतिस्स ने स्वयं को चेताया, श्रद्धेयतिस्स, अब अधिक समय नहीं बचा है, भोर निकट है, प्रयास करो। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा की साधना में सशक्त प्रयास किया तथा जैसे ही उन्होंने एक स्थिर मन के साथ अभ्यास किया, भोर हो गई। जैसे ही सूर्योदय हुआ, उन्होंने अपनी आकांक्षा पूरी की तथा परम सुख अर्थात अरहत्व प्राप्त किया। मैंने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली है, यह सोचकर वे गदगद हो गए। तब उन्होंने लुटेरों को उठाया और बोले, प्रातः हो गई, उठो उठो और आ जाओ। और वे आनंद में चूर थे। अतः सयादा ने शिष्यों से पूछा, अच्छा तो क्या थेरतिस्स बुद्ध के सच्चे शिष्य थे, अरहत थे? जी हां भंते, वे थे। आपको क्या लगता है कौन शीघ्र गति से विकसित होता है? वह जो दोनों टूटे पैरों के साथ ध्यान लगाता है, अथवा वह जो आप जैसे ध्यान लगाते हैं वैसे ध्यान लगाता है। भंते, पहले तो मैं बिना अपने पैरों को तोड़े ही ध्यान लगाना पसंद करूंगा। थेरेटिस ने अपने दोनों पैरों के टूटे होने पर भी प्रातः होने से पूर्व ही अर्हत्व उपलब्ध कर लिया। क्या आप पौ फटने के पहले कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं प्राप्त कर सकूंगा भंते, मुझे तो उससे अधिक समय लगेगा। हम लोग आराम से काम करते हैं, यदि किसी को अपने पैर नहीं तोड़ना पड़ता तो प्रयास कम होता है और इसलिए प्रगति धीमी होती है। इसका अर्थ यह है कि आप अपना लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। भंते, हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, तो संभवतः आपको अपने पैरों को तोड़ देना चाहिए और तब ध्यान लगाना चाहिए। मुझ में ऐसा करने का साहस नहीं है भंते, मैं कहता तो हूँ कि मैं निर्वाण की आकांक्षा रखता हूँ, किंतु मन में मैं अभी भी भयभीत हूँ। अपने ही पैरों को तोड़ देने के पश्चात अपनी हत्या को स्वीकार करने की मुझ में शक्ति नहीं है। ऐसी बात है तो बस साधना करते रहिए, किंतु अपने पैरों को तोड़े बिना। जिस तरह से आपने हमें सिखाया है हम वैसे ही कठोर परिश्रम करेंगे भंते, हम विशाखा तथा अनाथ पिंडिक का अनुकरण कर रहे हैं। भंते, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि वे अब देवलोक में एक अच्छे जीवन का आनंद ले रहे हैं तथा हम भी उसी प्रकार का आनंद लेना चाहते हैं। भंते, यहाँ हम बता दें कि विशाखा बुद्ध की एक प्रख्यात गृहस्थ महिला शिष्या थी तथा अनाथ पिंडिक बुद्ध के एक प्रख्यात गृहस्थ शिष्य थे। उनके विषय में विनय पिटक की गाथा 216 से 223 देखी जा सकती है। इसी प्रकार देवलोक के विषय में जानकारी पाली टेक्स्ट सोसाइटी की सुमंगल विलासिनी तृतीय के पृष्ठ 740 पर उपलब्ध है। तो सयादा ने कहा, बहुत कुछ उपलब्ध कर लेने के पश्चात वे एक अच्छे जीवन का आनंद ले रहे हैं, किंतु आपने अभी तक उस स्तर को नहीं प्राप्त किया है। किया है क्या? क्या आप वास्तव में वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने किया था? अनाथ पिंडिक एक साहूकार के रूप में व्यापार करने राजगृह, पाली में राजगह, आधुनिक राजगीर गए थे। जब वे वहां पहुंचे केवल तभी उन्हें पता चला कि विश्व में एक बुद्ध उदय हुए हैं। वे ध्यान लगाने या बुद्ध को नमन करने के लिए राजगह नहीं गए थे, किंतु जब उन्हें बुद्ध के विषय में बताया गया तो वे मध्य रात्रि में तत्काल बुद्ध के यहाँ गए। बुद्ध जहाँ रह रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें नगर की दीवारों के बाहर जाना पड़ा था। जब वे बुद्ध के समक्ष खड़े हुए तो उन्हें वह प्राप्त हो गया जिसके की वे आकांक्षी थे। यदि कोई व्यक्ति मध्य रात्रि में सब कुछ छोड़कर बुद्ध की ओर भागता है तो उस व्यक्ति का प्रयास महान है या अल्प? आपको क्या लगता है कि उन्होंने वहां जाते समय क्या अपने मन से बुद्ध को कभी निकलने दिया होगा? नहीं भंते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, तो अपने बारे में मुझे बताइए। भंते, जब हम चलते या सोचते इत्यादि हैं तो हम ध्यान की विषय वस्तु का संज्ञान खो देते हैं। यदि आप अनाथ पिंडिक की तरह बनना चाहते हैं तो आपको वैसे ही प्रयास करना होगा जैसे कि उन्होंने किया था। बुद्ध के यहाँ पहुँचने के लिए अनाथ पिंडिक को एक श्मशान से होकर जाना पड़ा था। भंते, इतना तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ हम बता दें कि मान्यता के अनुसार श्मशान में भूत प्रेत तथा नरभक्षक दैत्य आदि निम्न कोटि के प्राणी रहते हैं। किसी श्मशान या कब्रिस्तान से होकर गुजरने के लिए व्यक्ति को या तो सांसारिक अर्थों में अत्यंत साहसी होना होगा अथवा चित्त एकाग्रता विकसित करनी होगी तथा यदि संभव हो तो प्रज्ञा पाली में पय्या अर्थात अंतर्दृष्टि भी। अच्छी नैतिकता वाले तथा विकसित मानस वाले व्यक्ति उपद्रवी निम्न प्राणियों के प्रभाव से संरक्षित माने जाते हैं। नश्वरता का एहसास करने के लिए सड़ते हुए शवों का अवलोकन भी एक प्रकार का ध्यान है जो श्मशान में किया जाता है। इस प्रकार की साधना करने वाले व्यक्ति की म्यांमार में अत्यधिक प्रशंसा की जाती है और सम्मान दिया जाता है। तो सयादो ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि अनाथ पिंडिक ने रात्रि के पहले पहर में अपनी ध्यान साधना प्रारंभ की तथा पौ फटने तक मुक्ति का सोतापत्ति मग्ग पद एवं फल पद प्राप्त कर लिया। किंतु यदि आप इसे उषा काल तक नहीं प्राप्त कर सकते तो कोई बात नहीं, यदि आप इसे सूर्योदय या उजाला होने तक भी प्राप्त कर लें तो भी ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या आप ऐसे काम करेंगे जिससे कि कल तक लक्ष्य प्राप्त कर सकें? यहाँ हम बता दें कि निर्वाण के चार चरणों में से प्रथम चरण श्रोतापन्न पाली में सोतापन्न मार्गपद पाली में मग्गपद एवं फलपद हैं। इस पुस्तक में प्रवचनों में प्रयुक्त पाली पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत सभी चरणों के विषय में कुछ जानकारी सम्मिलित है। तो शिष्य ने कहा, भंते, आपके विहार में आने के लिए हम भी एक कब्रिस्तान के बीच से होकर जाएंगे तथा इस प्रकार हम अनाथ पिंडिक का अनुसरण करेंगे। क्या उन्होंने सती में निरंतरता को बाधित होने दिया था? भंते, उन्होंने नहीं होने दिया, किंतु जाने के रास्ते के संबंध में उन्होंने जो किया था हम उतने तक ही वैसा कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में अनाथ पिंडिक की तरह बनना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना होगा। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आप अपनी आकांक्षा पूरी कर सकते हैं। यदि आप परिश्रम नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्या यह संभव नहीं कि जहां वायु का स्पर्श होता है आप उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें? यह संभव है भंते। अनाथ पिंडिक की तरह बनने के लिए मैंने आपको जैसे सिखाया है वैसे ही अभ्यास करना होगा। क्या आप कल मुझे बताएंगे कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? मैं तो आपको बताऊंगा कि मैंने अभी तक नहीं प्राप्त किया है भंते। क्या आप जानते हैं कि अनाथ पिंडिक ने जागृति का प्रथम अर्थात श्रोतापन्न पद प्राप्त करने के पश्चात कितना कार्य किया था? उन्होंने सोचा, यह तो अतुल्य है, मेरे राजा, मेरे लोग, मेरे संबंधी, मेरे पुत्र एवं पुत्रियां, नगरवासी तथा ग्रामीण, इन सभी लोगों ने अभी तक यह नहीं सुना है कि एक बुद्ध उदय हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वे उसी परमानंद का अनुभव करें जो मैंने किया है। अच्छा, तो मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मुझे बुद्ध को आमंत्रित करना होगा तथा उन्हें मेरे नगर श्रावस्ती पाली में सावत्थी में कुछ समय तक रहने के लिए बाध्य करना होगा, तो सभी जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। महान करुणा के कारण बुद्ध उन्हें शिक्षा देंगे तथा शिक्षण के समापन पर मनुष्य एवं देवता समान रूप से वह परमानंद प्राप्त करेंगे जिसे मैंने प्राप्त किया है। अनाथ पिंडिक ने परम सत्य समझ लिया था तथा वे वह कारण जानते थे जिससे कि उन्होंने यह समझा था। अन्य लोगों को भी समझने में सहायता करने के लिए उन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया। राजगह से अपने पैतृक नगर तक के मार्ग में प्रति 10 मील की दूरी पर उन्होंने धर्मशालाएं या विश्राम गृह बनवाए। सावत्थी में उन्होंने बुद्ध के लिए जेतवन विहार का निर्माण करवाया तथा उन्होंने प्रत्येक वस्तु की ऐसी व्यवस्था की जिससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थान हो। उन्होंने सब कुछ प्रदान किया, भिखारी से लेकर राजा तक सभी को दिया। अनाथ पिंडिक की व्यवस्था को धन्यवाद। बुद्ध की सावत्थी की यात्रा पर जिन लोगों ने उनके दर्शन किए उन्हें भी लाभ हुआ। बुद्ध की यात्रा के दौरान अनेक लोगों ने, देवलोक एवं ब्रह्मलोक के प्राणियों ने वह प्राप्त किया जिसकी उन्होंने आकांक्षा की थी। आपको क्या लगता है कि कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे? हम नहीं जानते भंते। तो कितने मनुष्यों, कितने देवता ब्रह्माओं ने निर्वाण प्राप्त किया? बहुतों ने भंते। कितने प्राणियों ने आंख की पलक की एक झपक में अपनी आकांक्षा पूरी की? सयादा ने ही स्वयं उत्तर दिया कि 18 करोड़ ब्रह्माओं ने तथा असंख्येय देवताओं ने। यहां हम बता दें कि एक के पश्चात 140 शून्यों के बराबर एक असंख्य होता है। सयादा ने फिर पूछा, कालांतर में कितने प्राणियों ने जागृति प्राप्त की? वे अवश्य असंख्य रहे होंगे भंते। सयादा ने बताया कि अनाथ पिंडिक ने बुद्ध के शिक्षण में सहायता प्रदान करना जारी रखा तथा उनके प्रयास के कारण अनेक लोगों ने अमृत पद प्राप्त किया। यह समझते हुए आपको कल तक अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करना होगा। क्या आप ऐसा करेंगे? भंते, मुझे इतना बड़ा मत समझिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कल तक इसे प्राप्त करने में सक्षम हूँ। आप भूखे हैं और आपकी पत्नी आपको भोजन प्रस्तुत करती है, परंतु फिर भी आप नहीं खाते। जब भोजन की बात आती है तो मैं भोजन की मेज पर जबरदस्ती चला जाऊंगा भंते। क्या आप भले ही खाना न चाहते हो फिर भी खाते हैं, अथवा इसलिए खाते हैं कि खाना चाहते हैं? क्योंकि मैं खाना चाहता हूं भंते। यदि आप एक बार खाएं तो कब तक आपकी भूख शांत रहती है? लगभग आधे दिन तक भंते। यदि आप उस प्रकार खाएं जैसे अनाथ पिंडिक खाते थे तो आपकी भूख कब तक शांत रहेगी? शेष भव चक्र अर्थात जन्म एवं मृत्यु के चक्र तक भंते। तो मुझे बताइए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है? आपकी पत्नी द्वारा प्रदत्त भोजन जो आपको आधे दिन तक संतुष्ट रखता है, अथवा वह जो बुद्ध देते हैं जो आपको शेष भव चक्र पर्यंत संतुष्ट रखता है? मुझे उत्तर देना होगा कि जो बुद्ध प्रदान करते हैं वही मेरे लिए सर्वोत्तम है भंते। जो आपकी आपको पत्नी प्रस्तुत करती है उसे तो आप खाते हैं, तो जो भोजन आपको बुद्ध प्रदान करते हैं उसका क्या करते हैं? भंते, मैं उसके बारे में हिचकिचाता हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का अनुमोदन नहीं करता भंते। अच्छा, कठिन परिश्रम कीजिए। आप इन अन्य सभी बातों के लिए इतना प्रयास करते हैं क्योंकि आप मन एवं पदार्थ को ठीक से नहीं देखते, किंतु आप बुद्ध के प्रति सम्मान अवश्य अनुभव करते हैं। ध्यान लगाने का निर्णय ले लिया है तो ध्यान लगाइए। जैसे आप ध्यान लगाते हैं तो संभव है कि आपके अंगों में पीड़ा एवं अकड़न हो, तो यह मत सोचिए मुझे यह पीड़ा क्यों हो रही है, क्या यह संकटमय है, किंतु एक संकल्प कीजिए, इसे संकटमय होने दो। यदि मुझे मरना पड़े तो पड़ने दो, मैं तो अतीत में भी मरा हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप कितनी बार मर चुके हैं? असंख्य बार भंते, मुझे बताइए कि क्या आपकी कभी ध्यान लगाते समय मृत्यु हुई है? नहीं भंते, मैं केवल तभी मरा हूँ जब मैं अकुशल मनस्थिति में रहा हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी इतना क्षुब्ध हूँ। अतः यदि हमें मरना है तो हमें इसे कैसे देखना चाहिए? मैं अभी तक ध्यान लगाते हुए कभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ हूँ। मैं प्रातः तक प्रतीक्षा नहीं करूँगा। मैं अभी मर भी जाऊँ तो मरने दो, जिससे कि मैं ध्यान लगाते हुए मृत्यु का अनुभव प्राप्त कर सकूं। आपको इस प्रकार सोचना चाहिए, यदि आप ध्यान लगाते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं बनते। यदि आप आलस्य एवं निष्क्रियता का जीवन जीते हैं तो क्या आप सुखी होंगे? नहीं बनते। मैं जन्म व मृत्यु के बंधन में चक्कर लगाता रहूंगा। बनते, आपको अपनी पीड़ा को इस प्रकार देखना चाहिए, समूचे भवचक्र में मैंने ध्यान के कारण कभी भी अंगों में पीड़ा या अकड़न का अनुभव नहीं किया है। यदि मैं इन कष्टों का अनुभव करूं तो यह अच्छा है। यद्यपि आपके अंगों में पीड़ा होती है, फिर भी रुकिए मत। यह जानते रहिए कि अतीत में समझदार लोग इसी मार्ग पर चले हैं। आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप प्रयास करने के विषय में केवल बातें ही करते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप ध्यान लगाते हैं केवल तभी आप समझ सकते हैं। अब आप संभवतः सोच रहे हैं, हम तो ध्यान लगाना चाहते हैं परंतु ये आदरणीय भिक्षु बड़ी देर से बात कर रहे हैं। तो अब अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, जैसा कि बुद्ध ने आपको करने के लिए बताया है, तथा दृढ़ प्रयास के साथ एवं अटलता के साथ ध्यान लगाइए।